ये मालूम कैसे होगा कि जो सुनन की फहरिस्त आपने मीज़ान की इब्तदा में दी है, उनवानात हैं 27, उसके तहत सैकड़ों सुनन हैं, उनमें से कौन सी सुन्नत फ़र्ज़ है, लाजिम है, कौन सी मुस्तहब है, अगर की जाए तो अच्छी बात है, ना की जाए तो उस पर कोई पुरसिश या सवाल नहीं होगा, इसकी नौइयत कैसे तय होती है?
मेरा ये काम जो कि मारज़ बहस में रहता है और इसके बारे में आप सवाल कर रहे हैं, तो एक चीज़ की सबसे पहले वजाहत कर दूं कि ये उनवानात हैं। बिलमूम लोग प्रोपेगंडा करने के लिए ये कहना शुरू कर देते हैं कि देखिए ये 27 सुनन, ये उनवानात हैं। मिसाल के तौर पर उसमें नमाज एक उनवान है। अब नमाज पूरी की पूरी अपने तमाम अज्ज़ा के साथ, अपने आमाल व अज़कार के साथ सुन्नत है, तो उसमें आपको उसकी पूरी तफसील आगे नमाज के बाब में मिलेगी। इसी तरह रोज़ा है, इसी तरह से हज उमरा है, इसी तरह से बाकी सुनन है, तो उनकी तफसीलात आगे किताब में बयान की गई हैं और उसके तहत एक उनवान के तहत बाज़ अवक़ात 10-20 चीज़ें होती हैं जिनको रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुन्नत ही की हैसियत से जारी फरमाया है। सुन्नत का मतलब क्या है? यहाँ ये लफ्ज़ इस मफहूम में इस्तेमाल होता है कि वो दीन के अहकाम, वो मुस्तकिल बिज़ात दीन के अहकाम जो किसी चीज़ से इस्तिंबात नहीं किए जाते, जो तफहीम व तबीन पर मबनी नहीं है, मुस्तकिल बिज़ात हैं, उनको रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीन की हैसियत से जारी किया है। उनकी इब्तदा चूँकि कुरान से नहीं हुई या उनमें से बाज़ के बारे में कुरान में कोई ज़िक्र भी नहीं मिलता, तो उनको हम कैसे मुतय्यन करेंगे, ये बताया जाता है उसमें। तो इस चीज़ को मलहूज़ रखना चाहिए। बुनियादी बातें हैं, बार बार इनकी तरफ इसलिए तवज्जो दिलाना पड़ती है कि हमारे यहाँ चूँकि इल्म का मिजाज नहीं है, तो इस वजह से प्रोपेगंडे के माहौल में बाज़ चीज़ों को ऐसे बयान कर दिया जाता है। जो सवाल आपने पूछा उसका जवाब ये है कि सुन्नत एक अमली चीज़ है और अमली चीज़ मुसलमानों के तवातुर में देखी जाती है। यानी सबसे पहले ये देखा जाता है कि क्या मुसलमान उसको दीन की हैसियत से इख्तियार किए हुए हैं। फिर ये देखा जाता है कि मुसलमानों का पूरा इल्म रसूलुल्लाह से उसकी निस्बत के बारे में मुत्तफ़िकुल लफ्ज़ है। पूरा इल्म यानी मराकश से इंडोनेशिया तक इस वक्त और फिर उसके बाद तारीख़ में, यानी मुसलमानों के इल्म का उस पर इजमा है, वो चीज़ तवातुर से नकल हुई है। यही वो चीज़ है कि जिसको हमारे कुदमा ये कहते थे कि ये नकलुल काफ़ा अनिल काफ़ा है, यानी मुसलमानों की पूरी जमात उसको नकल कर रही है। तो इससे वो अमल एक मशरू अमल साबित हो जाता है कि ये दीन का अमल है, इसके बारे में अब दूसरी कोई राय नहीं कायम की जा सकती, इसमें इख्तलाफ की गुंजाइश भी नहीं मानी जा सकती। यही अल्फाज मैंने लिखे हैं। अब ये सवाल पैदा होता है कि जो चीज़ इस तरह से एक मशरू अमल के तौर पर मिली है उसकी हैसियत क्या है? यानी ये फ़र्ज़ है, ये वाजिब है, ये इस्तेहबाब का कोई अमल है? इसके दलाइल बिल्कुल अलग होते हैं।
अच्छा,
और ये दलाइल या तो ऐसा होता है कि कुरान मजीद उसको बयान कर देता है नफियन या इस बातन किसी पहलू से बयान कर देगा उसको, और या ये होता है कि मुसलमानों के इजमा ही में वो चीज़ उसी हैसियत से मुंतकिल हो जाती है।
अच्छा।
लेकिन उसकी कोई मिसाल नहीं है कि वो अलग से हो। आम तौर पर कुरान मजीद उसकी तायीद कर रहा होता है या उसका ज़िक्र कर रहा होता है या उसमें नफियन या इस बातन उसकी तायीन के लिए ज़रूरी बातें कह रहा होता है, तो इसलिए ये उन दलाइल से मुतय्यन होता है। यानी ये किसी अमल को देख लेने से मुतय्यन नहीं होता। तो अगर किसी अमल के बारे में ये पता चल जाए कि ये फ़र्ज़ है, ये ज़रूरी है, इसको करना लाजिम है, तो ये मालूम हो जाएगा। अगर ऐसा नहीं मालूम हुआ, यानी ना ये चीज़ मुसलमानों के यहाँ बिलिजमा नकल हुई, ना कुरान मजीद ने इसको बयान किया, तो फिर उसके बाद वो एक मुस्तहब अमल माना जाता है। यानी ये दीन का अमल है, पसंदीदा अमल है, ये होगा तो अल्लाह इसका अजर अता फरमाएगा, हर मुसलमान को इसका एहतमाम करना चाहिए, लेकिन ये वाजिब या फ़र्ज़ नहीं है।
ठीक है, सब कुछ मिसालें मैं आपके सामने रखता हूँ, उससे जो पूरा आपका नुक्ता नज़र है समझने में मज़ीद मदद मिलेगी। मसलन सुनन की फहरिस्त में आपने बयान किया है नमाज है, कुर्बानी है, खतना है, तीनों मिसालों को मैं लेता हूँ। नमाज के बारे में कुरान मजीद कहते हैं नसलात कानत अल मोमिना किताब मौकूता, तो क्या कुरान की इस आयत से हमें मालूम हुआ कि जो सुन्नत से 5 नमाज़ें हमें मिल रही हैं वो फ़र्ज़ हैं, लाजिम हैं, अदा करना वाजिब है?
ये तो हर ज़रिए से मालूम हो गया, यानी इसमें तो दो राय हो नहीं सकती किसी भी ज़रिए में। यानी रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज़ों को जारी किया तो पहले दिन से मुसलमानों के इल्म का इस पर इजमा रहा कि ये एक فرض عبادت ہے، پانچ وقت فرض کی گئی ہے۔ یہ ایسا معاملہ تو نہیں تھا کہ کہیں سال میں ایک بار کرنا ہے یا زندگی میں ایک بار کرنا ہے، تو اس وجہ سے اس کے بارے میں خود مسلمانوں کے ہاں بھی ان کے علم میں کبھی کوئی اختلاف نہیں ہوا۔ پھر قرآن مجید نے جب اس کا جگہ جگہ ذکر کیا تو اس میں بھی یہ واضح ہو گیا کہ یہ تو صرف یہی نہیں ہے، یعنی نماز کے وہ فرض ہے، بلکہ اس کو اللہ تعالیٰ نے کفر و ایمان میں فارق بنا دیا، اس سے بھی آگے بڑھ کر بیان کیا۔ آپ اگر یہ دیکھیں تو آخرت کے لحاظ سے بھی جگہ جگہ یہ بیان کیا ہے کہ اگر کسی آدمی نے تکذیب کر دی اور وہ اللہ کے سامنے سر جھکانے کے لیے تیار نہیں ہوا تو پھر اس کا ٹھکانہ جہنم ہی ہے۔ تو قرآن مجید نے متعدد اسالیب میں اس چیز کو بیان کیا، اور جب یہ موقع آیا کہ جب قصر نماز کا حکم بیان کرنا تھا تو ایک مرتبہ پھر اس کی وضاحت کر دی کہ آپ نے جیسے کہ آیت پڑھی کہ ان الصلاۃ کانت علی المومنین کتابا موقوتا، تو اس کے معاملے میں تو یوں سمجھ لیجئے کہ جس کو ہمارے ہاں ہمارے فقہا بیان کرتا ہے نا کہ ثبت بالقرآن و سنہ والاجماع، یہ اس طرح کی چیز ہے، تو اس میں تو کسی بحث کی گنجائش ہی نہیں۔
قربانی اور ختنے کے بارے میں بتائیے۔
قربانی ایک مستحب چیز ہے، یعنی نیکی کا کام ہے، خیر کا کام ہے، جو کچھ بھی اس کے بارے میں قرآن میں بیان ہوا ہے، جو چیزیں بھی مسلمانوں کے ہاں منتقل ہوئی ہیں ان سے یہی بات معلوم ہوتی ہے، اس کے وجوب یا اس کی فرضیت کی کوئی دلیل موجود نہیں ہے، اور جب کوئی دلیل موجود نہ ہو تو پھر وہ چیز کیا ہوتی ہے؟ مستحب، یعنی ایک عمل مشروع ہو جاتا ہے، وہ دینی عمل بن جاتا ہے، وہ نیکی اور خیر کا کام بن جاتا ہے، مسلمانوں کو اس کی ترغیب دی جاتی ہے، لیکن اس کی فرضیت کی دلیل چونکہ نہیں ہے تو وہاں وہ استحبابی کے درجے میں رہے گا۔
ٹھیک۔ اور ختنے کے بارے میں بیان فرمائیے۔
ختنے کا معاملہ بھی بالکل ایسا ہی ہے، اسی طریقے سے جو تطہیر بدن کے آداب ہیں وہ سب دین کا حصہ ہیں، ان کو اسی طرح ادا کرنا ضروری ہے۔ جس کو ہم شریعت کہتے ہیں، ایک لفظ میں اس کی تعریف یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی حکمت کو سامنے رکھ کر کسی مقصد کو حاصل کرنے کے لیے ایک طریقہ خود مقرر کر دیا، تو اس وجہ سے اس طریقے سے ادنا انحراف بھی نہیں کیا جا سکتا، لیکن یہ بھی ایک مستحب عمل ہے۔